पृष्ठ संख्या 70, स्पिक मैके किसी भी लाभ की इच्छा के बिना मंगल की कामनाओं से परिपूर्ण निस्वार्थ सेवाभावी युवाओं द्वारा संचालित सक्रिय आंदोलन है। सांस्कृतिक विनाश की जो प्रक्रिया भारतीय जन जीवन के प्रत्येक पक्ष में चल रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए ही स्पिक मैके का उदय हुआ। भारतीय युवा वर्ग को अपनी सांस्कृतिक समृद्ध विरासत की या तो बहुत कम जानकारी है या बिल्कुल ही नहीं। हमारे जीवंत परंपराओं का जो अवमूल्यन हुआ है तथा जैसा हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों का परिवेश है, उसमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का कोई परिचय ही नहीं मिलता। यदि कहीं कुछ मिलता भी है तो अरुचिकर ढंग से ही आगे जाने की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है। पृष्ठ संख्या 71। इन्हीं मूल उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही स्पिक मैके संस्था का गठन किया गया। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारतीय पारंपरिक संस्कृति से उसके मूल रूप से परिचित कराना है, ताकि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति के गरिमापूर्ण सौंदर्य एवं वैभवशाली समृद्ध कलाकारों की महिमा को केवल जाने ही नहीं आत्मसात भी करे, उसके प्रति संवेदनशील रहकर समन्वयवादी मानवीयता के मूल चिंतन का आधार पा सके। भारतीय शास्त्रीय संगीत हजारों साल पुराने हैं तथा मानवीय अभिव्यक्ति का मुख्य साधन रहे हैं। आज भी अपनी क्षमता से यह कलाएं युवाओं की मात्र प्राय कोई मात्र संगठन ही नहीं, एक आंदोलन है जो छात्रों का छात्रों के लिए और छात्रों द्वारा संपादित होता है। उद्गम। सन 1977 में स्पिक मैके ने आकृति ग्रहण की, किंतु शुरू से ही यह ध्यान रखा गया है कि एक संस्था भर न रह जाए, बल्कि यह पूरे देश में एक आंदोलन का रूप ले ले। यद्यपि पहली मीटिंग में उपस्थित शोचनीय रही, किंतु धीरे धीरे उपस्थिति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस संस्था ने यह सही दिशा ग्रहण की एवं संपूर्ण देश से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। आज स्पिक मैके की शाखाएं देश विदेश में सक्रिय हैं। कार्यशैली। इसका केंद्रीय संचालन दिल्ली स्थित केंद्रीय मुख्य शाखा सेंट्रल कोर ग्रुप द्वारा होता है। विभिन्न छोटे बड़े शहरों में अध्यायों यानी चैप्टर्स की स्थापना की गई है। यह अध्याय या चैप्टर्स केंद्रीय शाखा के निर्देशन में स्पिक मैके के मूल सुविधा अनुसार कार्य करते हैं। सदस्यता। औपचारिक सदस्यता यद्यपि आवश्यक नहीं है, किंतु कुछ अध्यायों द्वारा यह नाम मात्र के शुल्क पर सदस्यों में दायित्व भावना जागृत करने के लिए की गई है। 90% से अधिक सदस्य छात्र ही हैं, जो कि छात्र जीवन की समाप्ति पर स्पिक मैके का संदेश अपने परवर्ती छात्र को दे जाते हैं। स्पिक मैके के सभी कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। गतिविधियां। स्वाख्या प्रस्तुति। यह स्पिक मैके की कार्यशैली का महत्वपूर्ण अंग है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ऐसे दर्शक वर्ग का विकास करना है जो शास्त्रीय सांस्कृतिक कलाओं का रसास्वादन कर सके। इस प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला शैक्षणिक सत्र के आरंभ में ही संपन्न होती है। अर्थात अगस्त सितंबर में इसमें कलाकार अपनी कला के मूलभूत बारीकियों की गहराइयों से तथा मार्मिक ढंग से समझाते हैं तथा अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसी श्रृंखला के अतिरिक्त भी स्वाख्या प्रस्तुतियां नियमित अंतराल में समय समय पर स्कूलों कॉलेजों में संपन्न की जाती हैं। इनमें प्रदर्शन नितांत औपचारिक होता है। उत्सव, यह श्रृंखला मुख्यतः जनवरी फरवरी में प्रत्येक वर्ष संपूर्ण देश में आयोजित होती है। इनमें कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन बड़े वैभवपूर्ण ढंग से संपूर्ण औपचारिकताओं को निभाते हुए करते हैं। उत्सव श्रृंखला में मुख्य उद्देश्य पूरे देश के समस्त अध्यायों तक पहुंचकर कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता है। ऐसा करने का कारण यह भी होता है कि स्वाख्या प्रस्तुतियां से यहाँ अभिरुचि उत्पन्न होती है। यहाँ कला का संपूर्ण दर्शन पूरी गरिमा एवं वैभव के साथ हो। उत्सवों की एक विशेषता यह भी है कि वरिष्ठ कलाकारों के साथ नए कलाकारों को भी प्रस्तुत किया जाता है। बैठक, स्पीक मैके का प्रमुख उद्देश्य हमारे प्राचीन संस्कृति के अनुसार उपासक रसिक संबंध प्रगाढ़ करने में है, अर्थात कलाकार को जो सुख सृजन एवं प्रस्तुति में प्राप्त होता है वही सुख दर्शन श्रोता भी अपने में अनुभव करें, यही बैठकों अथवा मासिक प्रस्तुतियों का भी आधारभूत सिद्धांत है, जो अत्यंत अनौपचारिक वातावरण में संपन्न की जाती है। स्वाख्या प्रस्तुतियों एवं उत्सवों के मध्य ये बैठकें एक सेतु अर्थात पुल का काम करती हैं। लोक शैली, विभिन्न क्षेत्रों की लोक शैलियां भी समय समय पर प्रस्तुत कर उनसे परिचय ग्रहण किया जाता है। पृष्ठ संख्या 73, चलचित्र। भारतीय संस्कृति से संबंधित पुरानी तथा नवीन फिल्मों का प्रदर्शन स्कूलों एवं कॉलेजों में किया जाता है। छात्रवृत्तियां, स्पीक मैके कला में रुचि तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही जिज्ञासु इच्छुक छात्रों का योग्य कलाकारों से संपर्क कराकर उनके अध्ययन में सहयोग भी देता है। इस प्रकार पुरानी गुरुकुल परिपाटी को पुनरुज्जित तथा पुनरुज्जीवित करने की कल्पना यत्नशील होती है। कलाकार, स्पीक मैके की प्रगति तथा प्रसार में देश के शीर्षस्थ कलाकारों का सक्रिय योगदान प्राप्त होता है। इसमें नए उभरते हुए कलाकारों का भी सहयोग रहता है। अर्थव्यवस्था, स्पीक मैके एक शैक्षणिक किंतु अव्यवसायिक आंदोलन है। इसकी अर्थव्यवस्था में संस्थाएं सहयोग देती हैं। राज्य सरकारें यथा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, केंद्रीय सरकार के विभाग तथा सांस्कृतिक युवा एवं ICCR फाउंडेशन और ट्रस्ट जैसे फोर्ड फाउंडेशन, निजी संस्थाएं तथा इंडियन ऑयल, श्रीराम फैब्रिक्स, उषा मार्टिन ब्लैक संस्था, इसका अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था देखती हैं। पुरस्कार, स्पीक मैके के प्रयासों को सांस्कृतिक उन्नयन हेतु वर्ष 1981 का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। स्पीक मैके के अंतर्गत व्याख्यान, 1985 अगस्त में दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में स्पीक मैके द्वारा लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गायन, वादन व नृत्य तीनों ही प्रकारों को उभारा गया है। स्पिक मैके के इन कार्यक्रमों के आयोजन करने के पीछे उद्देश्य था युवा पीढ़ी को भारतीय संगीत कला से अवगत कराना। पृष्ठ संख्या 74। मिरांडा हाउस में उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खां साहब, जो ध्रुपद डागर परंपरा के प्रतिनिधि कलाकार हैं, उनका लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ध्रुपद गायन से संबंधित श्रोताओं को समझाना व अन्य गायन शैलियों से इसकी भिन्नता दिखाना था। उक्त स्थान पर ही श्रीमती कल्याणी, कुट्टी अम्मा और उनकी शिष्याओं द्वारा दक्षिण को मोहिनी अट्टम नृत्य पर सोदाहरण व्याख्यान दिया गया। मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक नृत्य प्रकार है। अपने अपने शिष्याओं श्रीमती कला, जो आपकी पुत्री हैं, श्रीमती ओमचेरी भल्ला एवं श्रीमती कृष्ण मेनन की सहायता से उपस्थित छात्र समूहों को मोहिनी अट्टम के प्रत्येक पहलू से अवगत कराया गया। साथ ही इसी के समकालीन उद्भव एवं वर्तमान में बहुप्रचलित दक्षिण भारतीय दो शैलियों भरतनाट्यम और कथकली से इसकी भिन्नता भी स्पष्ट की गई। विशेषतः जब एक ही प्रसंग के तीनों शैलियों में दिखाया गया, तब नृत्य नृत्य व भाव पक्ष की दृष्टि से तीनों का अंतर स्पष्ट हुआ। इस 3 दिन के कार्यक्रम में श्रोताओं को बहुत कुछ सीखने को मिला। यह स्पीक मैके का एक सुंदर व स्वस्थ प्रयास कहा जा सकता है। स्पीक मैके संस्था की गतिविधियां उत्तरी और दक्षिण समन्वय। वर्तमान समय में इस संस्था द्वारा उत्तर भारत में दक्षिणी तथा दक्षिण में उत्तरी भारतीय संगीत के कार्यक्रम संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिससे उत्तर में दक्षिण तथा दक्षिण में उत्तर संगीत को समझा जा सके। यह एक नवीन प्रयास है जिसके द्वारा दोनों पद्धतियों के कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उभरते हुए कलाकारों को कला प्रदर्शन का अवसर। इस संस्था के अनेक शाखाएं हैं जो कई शहरों में अपना कार्य कर रही हैं। स्पीक मैके द्वारा इन शाखाओं से संबंधित सभी उभरते हुए कलाकारों को प्रदर्शन के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसके द्वारा उनकी कला को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। डॉक्टर किरण सेठ से साक्षात्कार पर आधारित। किन उद्देश्यों को लेकर अपने स्पीक मैके संस्था की योजना बनाई? तो डॉक्टर किरण सेठ जवाब देते हैं, हमने देखा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारी भारतीय संस्कृति से दूर होती चली जा रही है और हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी ही है जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, न स्कूलों में न कॉलेजों में। जब युवाओं को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी जाएगी, तब उनकी रुचि कैसे बढ़ेगी? इसलिए हमने सोचा कि हमें अपने स्कूल व कॉलेजों में पुरानी परंपरा लानी चाहिए, जिसमें 2 लाभ होंगे। पहला, उनको शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा, रुचि में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके द्वारा हो सकता है कि शास्त्रीय संगीत के स्तर में भी वृद्धि हो सके। दूसरा प्रश्न, आपका इस दिशा में प्रेरणा स्रोत क्या था? उत्तर, मैं स्वयं पाश्चात्य संगीत को अधिक पसंद करता था। हमारे आईआईटी में पूरी रात शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, जिसमें भारत के उच्च कोटि के कलाकार जैसे पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां साहब आदि आमंत्रित किए जाते थे। आरंभ में मेरी रुचि शास्त्रीय संगीत की ओर नहीं थी, हम लोग केवल भीड़ को देखने जाते थे। लेकिन एक बार उस्ताद नसीरुद्दीन खां और अमीनुद्दीन खां डागर बंधुओं का ध्रुपद गायन सुना, जो मेरे लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। यह संगोष्ठी 1971 में अमेरिका में हुई थी। मेरी रुचि और जिज्ञासा बढ़ती रही। वहीं से शौक इतना बढ़ गया कि जो भी कलाकार न्यूयॉर्क के द्वारा जाते, हम उन कलाकारों को अपने यहाँ कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते थे। तीसरा, इस संस्थान को आरंभ करते समय आपको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, ऐसा कोई भी विचार दिमाग में नहीं था, क्योंकि चाहे गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, सभी संगीत में समान रूप से विद्यमान महत्व रखते हैं। प्रमुख लक्ष्य है प्राचीन भारतीय परंपरा सभ्यता को विद्यार्थियों में उत्पन्न करना। किस वर्ष में स्पीक मैके संस्था का गठन किया गया? 1977 में पहला आयोजन, 1978 में डागर बंधुओं के कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया। हालांकि 1972 से ही अमेरिका में भारतीय संगीत के कलाकारों के कार्यक्रम रखे जाते थे, किंतु भारत में 1978 में आकर आईआईटी में डागर बंधुओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरंभ में किस प्रकार के आयोजन किए गए? सर्वप्रथम गायन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 8 कलाकारों ने भाग लिया। धीरे धीरे नृत्य एवं वाद्य संगीत के आयोजन भी साथ साथ चलते रहे। आपने इस संस्था में अधिकतर युवा पीढ़ी को ही प्रोत्साहन क्यों दिया है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो एंट्री पॉइंट बनाना था। जो बड़े हो गए हैं, उनको भी बदलना मुश्किल है। एक ही जगह थी जहां हम प्रवेश कर सकते थे, वो थी युवा पीढ़ी, जो स्कूल कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रही है। आज युवा पीढ़ी प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है, कुछ कर गुजरने को आतुर रहती है, जिस कारण इस आंदोलन को सफल बनाने में एक ही वर्ग था, वह थी युवा पीढ़ी। जिन कलाकारों के आप कार्यक्रम करवाते हैं, उनका चयन किस आधार पर करते हैं? इसके लिए निश्चित परिधि यह है कि इसमें 2 श्रेणियां रहती हैं। पहली श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर के कलाकार और दूसरी श्रेणी में उभरती हुई प्रतिभाएं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो उच्च कोटि के विद्वान तो हैं, लेकिन उनकी पहचान न होने के कारण उनको हम नहीं ले पाते। अतः अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कलाकार का नाम अनुमोदित कर देगा। इससे कुछ असुविधा हो सकती है। यही विशेष कारण है कि हम इन 2 श्रेणियों के कलाकारों को आमंत्रित कर सकते हैं। किसी शहर में स्पिक मैके का सब चैप्टर बनाने के लिए किन-किन शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है? इसके लिए कोई विशेष शर्त नहीं है। श्रद्धा, निष्ठा, सेवा भाव हो तो एक व्यक्ति भी इसका सब चैप्टर शुरू कर सकता है, क्योंकि इसमें स्पिक मैके के प्रथम शर्तों में रुचि और सेवा भाव, यानी कुछ लेने की नहीं बल्कि देने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही सब चैप्टर खोलकर संगीत की सेवा कर सकता है।